एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
और आप सबका स्वागत है इस ज्ञान गोष्ठी में। हमारी कोशिश रहती है कि हम अहम मुद्दों पर, अहम किताबों पर यहाँ बातचीत करें थोड़ी सरल भाषा में।
हाँ, और आज का जो विषय है वो तो मतलब बहुत ही ज़रूरी है, हमारी रोज़ की ज़िंदगी से भी जुड़ा है और देखें तो हमारे भविष्य से भी। हम बात करने वाले हैं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की।
और इस रिश्ते को समझने के लिए हम स्टीफन स्मिथ की एक किताब है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है ना जिस पर अक्सर दो छोर दिखते हैं, मतलब या तो पर्यावरण बचा लो या फिर विकास कर लो।
हाँ हाँ, वही, जैसे दोनों साथ चले नहीं सकते।
जी, जैसे कि ये दोनों दुश्मन हो।
सही कहा। और ये बहस भी कोई नई नहीं है, काफी पुरानी है, पर ये किताब ये इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करती है। ये कहती है कि जो पर्यावरण की समस्याएं हैं ना, जैसे पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, ये असल में आर्थिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
अच्छा।
हाँ, और कमाल की बात ये कि अर्थशास्त्र के जो टूल्स हैं उन्हीं से इनको सुलझाने में मदद मिल सकती है। तो ये वो पर्यावरण बनाम अर्थव्यवस्था वाली लड़ाई से थोड़ा आगे जाती है, एक एक समाधान की तरफ देखती है।
अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मतलब इकोनॉमिक्स, जिसको हम कई बार प्रॉब्लम का हिस्सा मान लेते हैं,
हाँ
वो सोल्यूशन भी दे सकता है।
हाँ बिल्कुल।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि स्टीफन स्मिथ है कौन जिनकी हम ये किताब डिस्कस कर रहे हैं।
स्टीफन स्मिथ, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, मतलब UCL में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। और ये सिर्फ किताबी प्रोफेसर नहीं है, इनका खास काम है पब्लिक फाइनेंस यानी सरकारी खर्चे वगैरह, और खास तौर पर एनवायरमेंटल पॉलिसी पर। ये इसके जाने माने एक्सपर्ट हैं।
अच्छा,
तो मतलब अकादमिक दुनिया में तो इनका नाम है, पर क्या इन्होंने क्या असल दुनिया की जो नीतियां बनती हैं उन पर भी कुछ काम किया है?
हाँ, यही तो इनकी खासियत है। इन्होंने यूके ट्रेजरी, मतलब ब्रिटेन का वित्त मंत्रालय समझिए, यूरोपियन कमीशन है, OECD है।
अच्छा, OECD भी।
हाँ, जो विकसित देशों का ग्रुप है। तो इन सबको इन्होंने सलाह दी है किस चीज़ पर, कि भाई पर्यावरण वाले टैक्स कैसे लगाएं, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी हो, इन सब मुद्दों पर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल समझ भी है, जमीनी हकीकत पता है
बिल्कुल,
कि कौन सी पॉलिसी काम करती है, कौन सी नहीं, है ना? प्रॉब्लम सॉल्वर है।
ये अप्रोच तो वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए अब किताब पर आते हैं। इसका इसका मेन आइडिया क्या है, मतलब सार क्या है इसका?
देखिए, किताब का जो सबसे बड़ा सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि पर्यावरण की जो ज्यादातर समस्याएं हैं ना, वो इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा बाजार, वो पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसकी असली कीमत वो वसूलता नहीं है।
अच्छा,
इसी को इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं मार्केट फेलियर, बाजार की विफलता।
मार्केट फेलियर, इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे, मतलब क्या हुआ इसका?
हाँ देखिए, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वो नदी में गंदा पानी छोड़ रही है। अब उस गंदगी से नदी खराब हो रही है, मछलियां मर सकती हैं, लोगों की हेल्थ पर असर पड़ सकता है, पानी साफ करने का अलग खर्चा है। ये सब क्या है? ये उस प्रदूषण की असली कॉस्ट है ना?
हाँ हाँ।
लेकिन ये कॉस्ट कौन उठा रहा है? समाज उठा रहा है। फैक्ट्री जो सामान बना रही है उसकी कीमत में ये कॉस्ट शामिल नहीं है। तो फैक्ट्री के लिए क्या हुआ? उसके लिए तो प्रदूषण फैलाना एक तरह से मुफ्त हो गया या बहुत सस्ता हो गया।
अच्छा, तो क्योंकि ये नुकसान की कीमत चुकानी नहीं पड़ती, इसीलिए फैक्ट्रियां जरूरत से ज्यादा प्रदूषण करती हैं, और हम भी शायद ऐसी चीजें ज्यादा खरीदते हैं जिनके बनने में प्रदूषण होता है।
बिल्कुल, एग्जैक्टली यही पॉइंट है, यही है मार्केट फेलियर। और स्मिथ कहते हैं कि इसका हल ये नहीं है कि हम बाजार को या इकोनॉमिक्स को गाली दें और कहें कि ये सब बेकार है, बल्कि हल है इन मार्केट फेलियर्स को ठीक करने में।
और वो ठीक कैसे होंगी, मतलब क्या तरीका है?
तरीका है मुख्य रूप से बाजार पर आधारित तरीकों का इस्तेमाल करना, मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे प्रदूषण पर टैक्स लगा दो।
अच्छा, टैक्स।
हाँ, एनवायरमेंटल टैक्स, या फिर एक कोटा तय कर दो कि कुल इतना ही प्रदूषण होगा, और उसके परमिट जारी कर दो, फिर उन परमिट्स को खरीदने बेचने दो। इसे कैप एंड ट्रेड कहते हैं।
कैप एंड ट्रेड।
तो ये किताब जो है वो इन्हीं इकोनॉमिक टूल्स का एक तरह से गाइड है, बताती है कि ये कैसे काम करते हैं और क्यों ये पुराने तरीकों से ज्यादा सरदार हो सकते हैं।
तो ये किताब फिर किसके लिए है? क्या ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट के लिए है या एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए है, जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए है, जो बिजनेस चलाते हैं उनके लिए है, और सच कहूं तो हर उस आम इंसान के लिए जो समझना चाहता है कि ये कार्बन टैक्स का क्या चक्कर है, सरकारें प्रदूषण रोकने के लिए क्या कर सकती हैं, ये सबके लिए है जो चाहते हैं कि भाई पर्यावरण भी साफ रहे और देश की तरक्की भी हो।
ये तो जरूरी बात है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब में जो मेन कॉन्सेप्ट्स है उन पर आते हैं। आपने मार्केट फेलियर बताया, किताब इसके क्या कारण बताती है, मतलब क्यों फेल होता है बाजार?
हाँ, तो पहला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एक्सटर्नैलिटीज, बाहरी प्रभाव।
एक्सटर्नैलिटीज,
हाँ, ये वही फैक्ट्री वाला उदाहरण है जब किसी एक के काम का असर किसी तीसरे पर पड़े जो उस लेन देन में शामिल नहीं है और उसे उसका कोई हर्जाना ना मिले, तो वो एक्सटर्नैलिटी है। पॉल्यूशन जो है वो एक क्लासिक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, नकारात्मक बाहरी प्रभाव।
अच्छा, क्या इसका उल्टा भी होता है, मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी?
हाँ बिल्कुल होता है। सोचिए, आपके पड़ोसी ने अपने गार्डन में बड़े सुंदर फूल लगाए, आपको रोज खिड़की से दिखते हैं, आपको अच्छा लगता है, शायद हवा भी थोड़ी बेहतर लगती है, ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। पर आपके पड़ोसी को आपकी इस खुशी के बदले में कुछ मिल तो नहीं रहा।
हाँ ये तो है।
तो हो सकता है वो उतने फूल ना लगाए जितने समाज के लिए अच्छे होते। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है, बुरी चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, अच्छी चीजें जरूरत से कम।
समझ गई। और दूसरा कारण क्या है मार्केट फेलियर का?
दूसरा बड़ा कारण है पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं।
पब्लिक गुड्स
जैसे
जैसे
साफ हवा, या देश की सुरक्षा, या फिर एक स्टेबल क्लाइमेट। इनकी खासियत यह है कि पहली बात, आप किसी को इनका इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते। या आप किसी को कह सकते हैं कि तुम साफ हवा में सांस मत लो, नहीं कह सकते। इसको कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। और दूसरी बात, अगर एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरे के लिए वो कम नहीं होती, नॉन राइवल रस।
अच्छा,
मतलब अगर मैं साफ हवा में सांस ले रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आपके लिए हवा कम हो गई।
हाँ ये भी ठीक है।
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर?
प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये मुफ्त में मिलती है, किसी को रोक नहीं सकते, तो कोई प्राइवेट कंपनी क्यों इनको प्रोवाइड करेगी या इनकी देखभाल क्यों करेगी?
लोग सोचेंगे भाई कोई और कर देगा, मुझे क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की। इसी को कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम।
फ्री राइडर, हाँ सुना है।
हर कोई बस में सवारी करना चाहता है पर टिकट कोई नहीं खरीदना चाहता।
नतीजा
पब्लिक गुड्स जरूरत से कम होती हैं।
समझ गई। और तीसरा कारण?
तीसरा है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, साझा संसाधनों की त्रासदी।
ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स,
हाँ, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन पर किसी एक का हक नहीं होता पर उनका इस्तेमाल लिमिटेड होता है, मतलब राइवल रस होते हैं। जैसे जैसे समुद्र की मछलियां, या गांव का वो चारागाह जहां सबके जानवर चरते हैं, या जमीन के नीचे का पानी जो कई लोग निकालते हैं।
अच्छा, तो इसमें ट्रेजेडी क्या है?
ट्रेजेडी ये है कि जब किसी चीज पे सबका हक होता है ना, तो असल में कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। हर कोई सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा निकाल लूं इससे पहले कि दूसरा निकाल ले। हर मछुआरा सोचेगा मैं ज्यादा मछली पकड़ लूं, हर किसान सोचेगा मैं ज्यादा पानी निकाल लूं। नतीजा क्या होता है, आखिर में वो रिसोर्स ही खत्म हो जाता है। मछलियां खत्म, चारागाह बंजर, पानी का लेवल नीचे।
अरे हाँ,
ये भी एक तरह की मार्केट फेलियर है, साझा संपत्ति का सही मैनेजमेंट नहीं हो पाता।
ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। इन विफलताओं को समझना तो बहुत जरूरी है। लेकिन आपने कहा था कि समाधान के लिए हमें पर्यावरण की चीजों का अमूल्य आंकना होगा, कीमत लगानी होगी, जैसे साफ हवा की या जंगल की। ये कैसे मुमकिन है? ये तो अनमोल है।
हाँ, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है और किताब इस पर काफी बात करती है। इसे कहते हैं एनवायरमेंटल वैल्यूएशन। और हाँ, ये चीजें अनमोल लगती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन स्मिथ का तर्क है कि अगर हम इनका कोई आर्थिक मूल्य, कोई इकोनॉमिक वैल्यू लगाने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम अनजाने में क्या कर रहे हैं, हम उन्हें शून्य मान रहे हैं, जीरो वैल्यू। और जिस चीज की कीमत जीरो होती है उसका क्या होता है, उसका बेहिसाब इस्तेमाल होता है, बर्बादी होती है, ये तो तय है।
हाँ नहीं, ये बात तो सही है, पर ये कीमत पता कैसे लगाते हैं? क्या आप कोई प्राइस टैग लगाते हैं हवा पर?
नहीं, प्राइस टैग तो नहीं लगा सकते, पर इकोनॉमिस्ट कुछ तरीकों से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका है लोगों के बर्तावों को देखना, इसे कहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस।
रिवील्ड प्रेफरेंस,
हाँ, जैसे ये देखना कि क्या लोग उन इलाकों में रहने के लिए ज्यादा महंगे घर खरीदते हैं जहां हवा ज्यादा साफ है, या वो किसी नेशनल पार्क में घूमने जाने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं। इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि वो इन चीजों को कितनी वैल्यू देते हैं।
अच्छा, मतलब उनके एक्शन से पता लगाना। और दूसरा तरीका?
दूसरा तरीका है लोगों से सीधे पूछना, स्टेटेड प्रेफरेंस। सर्वे किए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके शहर की नदी गंदी है उसको साफ करने के लिए आप कितना पैसा देने को तैयार होंगे, या किसी जंगल को कटने से बचाने के लिए आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। इसको कंटिंजेंट वैल्यूएशन कहते हैं। हाँ, इसमें दिक्कतें हैं, लोग जो कहते हैं जरूरी नहीं वो असल में करें।
हाँ, वो तो है,
लेकिन ये कुछ तो आधार देता है। जैसे वो अलास्का में एक्सॉन वैल्डीज तेल रिसा हुआ था ना 1989 में।
हाँ हाँ, सुना है।
उसके बाद इसी मेथड से पता लगाया गया था कि अमेरिकी लोग भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए कितना देने को तैयार हैं। तो मुश्किल है पर जरूरी है।
ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, मार्केट फेलियर क्यों होता है ये जान लिया, और वैल्यूएशन की जरूरत भी समझ ली। अब आते हैं असली चीज पर, समाधान। किताब क्या कहती है, कौन सी पॉलिसीज काम करती हैं?
हाँ, तो किताब मुख्य रूप से दो तरह की पॉलिसीज की तुलना करती है। पहला है पुराना परंपरागत तरीका, कमांड एंड कंट्रोल।
कमांड एंड कंट्रोल,
हाँ, मतलब सरकार सीधे सीधे कमांड देती है, आदेश देती है और कंट्रोल करती है। जैसे सरकार ने नियम बना दिया कि सारी फैक्ट्रियों को ये वाली खास टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, या कोई भी फैक्ट्री इस लिमिट से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं कर सकती। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया सबके लिए।
ये तो सीधा लगता है सुनने में, तो इसमें क्या दिक्कत है?
दिक्कत यह है कि ये अक्सर बहुत महंगा पड़ता है, इनएफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि सोचिए, हर फैक्ट्री के लिए पोल्यूशन कम करने की कॉस्ट अलग अलग होती है।
हाँ, सही है।
किसी के लिए शायद बहुत सस्ता हो, कोई नई टेक्नोलॉजी हो उनके पास, किसी के लिए बहुत महंगा हो, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल क्या करता है? वो सबको एक ही लाठी से हांकता है।
हाँ,
इससे होता यह है कि समाज को ओवरऑल ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है उस पोल्यूशन को कम करने के लिए, और ये कंपनियों को कोई खास मोटिवेशन भी नहीं देता कि वो उस तय लिमिट से ज्यादा अच्छा करें या कोई नई और सस्ती टेक्नोलॉजी खोजें।
अच्छा, तो फिर बेहतर ऑप्शन क्या है?
बेहतर ऑप्शन है मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, बाजार आधारित तरीके। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और अक्सर कम खर्चीले। इनमें दो सबसे मेन है। पहला है एनवायरमेंटल टैक्स।
टैक्स,
हाँ, इनको पिगुवियन टैक्स भी कहते हैं। एक इकोनॉमिस्ट थे आर्थर पिगू, उनके नाम पर।
अच्छा, ये कैसे काम करता है?
सिद्धांत बहुत सिंपल है, जो नुकसान करे उस पर टैक्स लगा दो, जैसे कार्बन टैक्स। अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उतना टैक्स देंगे। इससे क्या हुआ, अब पोल्यूशन करना फ्री नहीं रहा, उसकी कीमत हो गई, वो कीमत कंपनी के खर्चों में जुड़ गई। अब कंपनियां खुद हिसाब लगाएंगी कि भाई टैक्स देना सस्ता पड़ रहा है या पोल्यूशन कम करना।
हाँ,
जिनके लिए पोल्यूशन कम करना आसान और सस्ता है वो ज्यादा कमी करेंगी, जिनके लिए बहुत महंगा है वो शायद टैक्स देना चुनेंगी। लेकिन नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि समाज के लिए जो पोल्यूशन कम करने का टारगेट है वो कम से कम टोटल कॉस्ट में अचीव हो जाएगा।
ये तो लॉजिकल लगता है। और दूसरा वाला तरीका?
दूसरा तरीका है ट्रेडेबल परमिट सिस्टम, इसको कैप एंड ट्रेड भी कहते हैं।
कैप एंड ट्रेड,
हाँ। इसमें सरकार पहले एक कैप लगाती है, मतलब एक लिमिट तय करती है कि पूरे देश में या पूरे सेक्टर में कुल मिलाकर कितना पोल्यूशन अलाउड है। मान लीजिए 1,000 टन।
ओके।
फिर सरकार उतनी ही परमिट जारी करती है। हर परमिट मान लीजिए 1 टन पोल्यूशन का अधिकार देता है। ये परमिट्स कंपनियों को या तो बांट दिए जाते हैं या नीलाम किए जाते हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्रेड। कंपनियां इन परमिट्स को आपस में खरीद बेच सकती हैं।
खरीदने बेचने से क्या होगा?
उससे वही जादू होता है जो टैक्स से होता है, एफिशिएंसी आती है। देखिए, जिन कंपनियों के लिए पोल्यूशन कम करना बहुत सस्ता है वो अपनी जरूरत से ज्यादा कमी कर लेंगी।
अच्छा,
अब उनके पास फालतू परमिट बच गए।
हाँ।
वो क्या करेंगी, वो इन परमिट्स को उन कंपनियों को बेच देंगी जिनके लिए पोल्यूशन कम करना बहुत महंगा पड़ रहा है।
हाँ।
तो बेचने वाली कंपनी को पैसा मिला, खरीदने वाली कंपनी ने महंगे तरीके से पोल्यूशन कम करने से खुद को बचा लिया।
हाँ।
और सरकार ने जो टोटल पोल्यूशन की लिमिट कैप तय की थी वो भी पूरी हो गई, और ये सब हुआ कम से कम ओवरऑल कॉस्ट पर।
अरे वाह।
अमेरिका में एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम बहुत सक्सेसफुल रहा था, और यूरोपियन यूनियन का जो ETS है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, वो भी इसी पर बेस्ड है।
ये तो वाकई बड़े स्मार्ट तरीके लगते हैं। क्या किताब इन्हें क्लाइमेट चेंज जैसी जो बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है उस पर भी अप्लाई करती है?
हाँ हाँ, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज को तो मतलब कई लोग कहते हैं कि ये इतिहास की सबसे बड़ी मार्केट फेलियर है।
सबसे बड़ी?
हाँ, क्यों? क्योंकि ये एक ग्लोबल एक्सटर्नैलिटी है। एक देश जो CO2 छोड़ता है उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और एक स्टेबल क्लाइमेट, एक स्थिर जलवायु क्या है, वो एक ग्लोबल पब्लिक गुड है।
हाँ, सही है।
फायदा सबको चाहिए, पर कीमत कोई अकेला देश क्यों चुकाएगा? यहाँ वो फ्री राइडर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो किताब डिस्कस करती है कि कैसे ग्लोबल लेवल पर कार्बन टैक्स लगाया जाए या ग्लोबल कैप एंड ट्रेड सिस्टम बनाया जाए। ये थ्योरी में तो अच्छे लगते हैं, पर इनको लागू करने में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी पॉलिटिक्स है, ये सब बातें भी किताब में हैं।
तो ये जो पूरी हमने चर्चा की, इससे इससे क्या मुख्य बातें हैं, क्या मेन संदेश हैं जो हमारे सुनने वालों को याद रखने चाहिए, मतलब की टेकअवेज क्या हैं?
देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल मैसेज तो यही है, पर्यावरण की समस्याएं असल में इकोनॉमी की समस्या हैं। मार्केट फेलियर है, लोग बुरे नहीं हैं, पर सिस्टम ऐसा है कि वो उन्हें पॉल्यूशन करने के लिए एक तरह से इंसेंटिवाइज करता है, क्योंकि उसकी पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ती।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और दूसरा?
दूसरा ये कि ये जो बाजार वाले तरीके हैं ना, टैक्स और कैप एंड ट्रेड, ये अक्सर पुराने कमांड एंड कंट्रोल वाले तरीकों से ज्यादा असरदार होते हैं और कम खर्चीले भी। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और कंपनियों को खुद नए इनोवेटिव तरीके खोजने के लिए मोटिवेट करते हैं।
सही है। तीसरा?
तीसरा, पर्यावरण की चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू निकालना, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई वैल्यू नहीं लगाएंगे तो हम अनजाने में उसे जीरो मान रहे हैं और फिर उसकी बर्बादी तो पक्की है।
चौथा पॉइंट क्या होगा?
चौथा और शायद सबसे पावरफुल आइडिया, कीमतों को सही करना, गेटिंग द प्राइसेस राइट, यही चाबी है। अगर हम पोल्यूशन की या नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल करने की सही कीमत तय कर दें जिसमें सारा नुकसान शामिल हो, तो बाजार खुद ही पर्यावरण का दोस्त बन सकता है।
वाह।
और पांचवा, एक उम्मीद की बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पर्यावरण की सुरक्षा ये साथ साथ चल सकते हैं, जिसको आजकल ग्रीन ग्रोथ कहते हैं। सही पॉलिसीज होंगी तो नई इंडस्ट्रीज आएंगी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इनोवेशन होगा।
हाँ, ग्रीन ग्रोथ। और एक आखिरी बात जो मुझे भी बहुत अहम लगी।
हाँ बताइए।
वो ये कि पॉलिसी का डिजाइन बहुत मैटर करता है, डिटेल्स बहुत जरूरी हैं। मतलब सिर्फ ये कह देना कि कार्बन टैक्स लगा दो काफी नहीं है, टैक्स की रेट क्या होगी, उससे जो पैसा आएगा उसका क्या होगा, क्या वो लोगों को वापस दिया जाएगा, ये सब बातें तय करती हैं कि पॉलिसी कितनी सफल होगी।
बिल्कुल सही, शैतान डिटेल्स में ही होता है ना।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, किताब में कुछ ऐसे आइडियाज भी हैं जो मतलब दिमाग में बैठ जाते हैं, कोट करने लायक?
हाँ हाँ, कुछ हैं। जैसे सीधे शब्द शायद ये ना हो, पर जो विचार है कि एनवायरमेंट कोई लग्जरी आइटम नहीं है, कोई शौक की चीज नहीं है कि जब अमीर हो जाएंगे तब देख लेंगे, बल्कि एक अच्छी क्वालिटी का एनवायरमेंट वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुनियाद है, बेसिक जरूरत है।
हाँ, ये उस सोच को एकदम पलट देता है कि पहले विकास फिर पर्यावरण। ये कह रहा है कि नहीं, पर्यावरण के बिना टिकाऊ विकास हो ही नहीं सकता,
है ना। और एक और विचार, बाजार बहुत कमाल की चीज है रिसोर्स बांटने में, लेकिन कब? जब कीमतें असली सामाजिक लागत को दिखाती हों, पर जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोई कीमत ही ना हो, तब बाजार बुरी तरह फेल हो जाते हैं। ये मार्केट फेलियर का निचोड़ है एक तरह से।
बिल्कुल। और एक सवाल जो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर गया, सवाल ये नहीं है कि क्या हम पर्यावरण बचाने का खर्चा उठा सकते हैं, असली सवाल तो ये है कि क्या हम इसे न बचाने का खर्चा उठा सकते हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज से जो बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, तूफान आएंगे, उनकी कॉस्ट कितनी होगी? वो कॉस्ट तो कहीं ज्यादा होगी।
सही बात है। और वो कार्बन टैक्स वाली बात भी, उसका नजरिया भी अलग है।
हाँ हाँ, वो बताइए।
कि लोग सोचते हैं कार्बन टैक्स बोझ है इकोनॉमी पर एक इकोनॉमिस्ट इसे ऐसे देखता है कि ये बोझ को शिफ्ट करना है। टैक्स का बोझ उन चीजों से हटाओ जो हमें ज्यादा चाहिए, जैसे नौकरी, इन्वेस्टमेंट, और उस चीज पर डालो जो हमें कम चाहिए, यानी पोल्यूशन। ये एक टैक्स स्वैप है, अगर ठीक से किया जाए तो।
हाँ, ये टैक्स स्वैप वाला आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब टैक्स का टोटल बोझ शायद बढ़े भी नहीं।
हाँ, शायद ना बढ़े। और क्लाइमेट चेंज पर एक और बात है जो थोड़ी उम्मीद देती है।
क्या?
कि क्लाइमेट चेंज शायद इतिहास की सबसे बड़ी मार्केट फेलियर है। हाँ, लेकिन ये इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स की ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मौका भी है। मतलब चैलेंज बहुत बड़ा है, पर हमारे पास टूल्स भी हैं जिनसे इसे फेस किया जा सकता है।
ये एक पॉजिटिव नजरिया है। अच्छा, तो ये सब जो हमने बातें की, इनका इनका आम आदमी की जिंदगी से क्या कनेक्शन है, क्या मतलब है इन सब का हमारे लिए?
देखिए, पर्सनल लेवल पर तो ये हमें अपने आसपास की चीजें समझने में मदद करता है। जैसे हम सोचते हैं ना कि अरे प्लास्टिक बैग पर ये 5-10 रुपए क्यों ले रहे हैं, या दिल्ली में वो ऑड इवन क्यों आया था, या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सरकार छूट क्यों दे रही है।
हाँ हाँ,
इन सब के पीछे यही इकोनॉमिक लॉजिक काम कर रहा होता है। और हम खुद भी थोड़ा सोच सकते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं, जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, जिसकी कीमत शायद हम सीधे नहीं चुका रहे हैं।
सही है। और बिजनेस के लिए, कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब है?
बिजनेस के लिए तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि एनवायरनमेंट के जो नियम कानून हैं उनको सिर्फ बोझ की तरह मत देखो, ये अवसर भी हो सकते हैं।
अवसर कैसे?
ऐसे कि जो कंपनियां अभी से क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाएंगी, एनर्जी एफिशिएंट बनेंगी, वो आगे चलकर ज्यादा कॉम्पेरेटिव होंगी। जब कार्बन पर कीमत लगेगी या नियम और सख्त होंगे तो वो फायदे में रहेंगी। ये रिस्क मैनेजमेंट भी है। जो कंपनियां पर्यावरण को इग्नोर करेंगी उन पर बाद में फाइन लग सकता है, उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है।
ये बात तो है, और सरकारों के लिए तो ये किताब एक तरह की गाइड बुक ही हो गई।
हाँ बिल्कुल, सरकारों के लिए तो ये एक पूरा खाका देती है कि कैसे आप असरदार पॉलिसी बना सकते हो जो कम खर्चीली भी हो और जिसे लागू करना भी मुमकिन हो, और ये भी कि कैसे देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री मिलकर काम करें ताकि विकास की हर योजना में शुरू से ही पर्यावरण का एंगल शामिल हो।
तो चलिए अब हम अपनी बातचीत के आखिर में आ गए हैं। अगर एक दो सबसे जरूरी बातें हों जो आज की इस चर्चा से हम सीख सकते हैं तो वो क्या होंगी आपके लिए?
मेरे लिए तो शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये पर्यावरण का दुश्मन नहीं है, बल्कि अगर इसे सही से इस्तेमाल करें तो ये उसका सबसे ताकतवर साथी बन सकता है। ये जो पर्यावरण की समस्याएं हैं ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये हमारे सिस्टम की गड़बड़ियां हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है।
हाँ बिल्कुल, और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइक की वो है इंसेंटिव्स की ताकत, प्रोत्साहन। सिर्फ सजा या डंडे से काम नहीं होता। अगर हम लोगों को, कंपनियों को सही दिशा में जाने के लिए सही इंसेंटिव दें, सही कीमतें तय करें, तो वो खुद ब खुद सही काम करने लगते हैं। ये बाजार की एनर्जी को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना है।
बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर ये किताब एक प्रैक्टिकल और उम्मीद भरा नजरिया देती है। ये दिखाती है कि लॉजिक से, एविडेंस से और सही इकोनॉमिक पॉलिसीज से हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो प्रॉस्परस भी हो, खुशहाल भी हो और सस्टेनेबल भी। मुश्किल है रास्ता, पर नामुमकिन नहीं लगता।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए सारा करा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।